प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 155। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुरासुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वडिशेष तीर्थंकरने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदु वळे हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं हूँ साम्यने जे नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम तीसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 93 पर, 93 नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, वहां से हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शरीर प्रमाण भिन्न प्रभु है। शरीर प्रमाण परंतु शरीर से जुदा और जिसमें अनादि अनंत अनाकुल आनंद और ज्ञान सामान्य रूप में पड़े हैं। इस सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति होने वाली है। अभी भी विशेष हो रहा है परंतु वो तो जैसा अनाकुल है वैसा नहीं हो रहा है, विपरीत हो रहा है, अधूरा हो रहा है। तो कहते हैं कि उसमें से परिपूर्ण जैसा स्वभाव है वैसे पर्याय में प्रकट होने की शक्ति वो सामान्य में पड़ी है। तो कहते अनादि अनंत अनाकुल आनंद और ज्ञान सामान्य रूप में पड़े हैं, जैसे वह 64 पोरी तिखास भरी है। वो तो काली है, न कदे नानी है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। फिर कहते कि अंदर वो लीलाश, क्या कहते उसको, हाँ, लीलापना और वो तिखास अंदर पड़ी है। वैसे ऐसे आत्मा में 64 नाम पूर्ण अनाकुल आनंद और ज्ञान पड़ा है, ऐसी बात है भाई। यह सामान्य रूप आनंद और ज्ञान जो ध्रुव रूप था, था यानी अनादि से है ही है, उस सामान्य पर यानी ध्रुव पर एकाग्र होकर सर्व विकास पर्याय में प्रकट हुआ, यानी केवल ज्ञान हुआ। सर्व परिपूर्ण जैसा स्वभाव है पर्याय वैसी प्रकट हुई। सामान्य ऊपर विशेष प्रकट हुआ, तो विशेष प्रकट हुआ तो सामान्य नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो तो सामान्य तो अनंत काल तक ऐसा का ऐसा रहेगा। ऐसा उपदेश सुनना कैसे और समझना कैसे? आपके व्यापार में तो ऐसी बातें कहीं आती नहीं। ऐसी बात है बापू, अलौकिक बात है। प्रभु एक बार सुन तो सही। लींडी पीपर में, छोटी पीपर में 64 पोरी चरपराई तिखास भरी है, तो उसे घुटने से, घुटना ने वो घिसते हैं ना, हाँ, शान पर घिसते। हिंदी में क्या कहते? शान कहते हैं, क्या वो पत्थर होता है ना गोल, नहीं वो शान कहते, क्या कहते उसे? वो चंदन वगैरह घिसते उसको क्या कहते वो पत्थर को? मराठी में उसको सहान कहते हैं। हिंदी में क्या कहते? ताराबेन को नहीं मालूम? हलवती अलग, वो तो वो सीधा होता है, सीधा होता है, सीधा वो पाटले जैसा होता है ना, खल, कोई बात नहीं, खल तो वो ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं, वो सीधा होता है, सीधा होता है। चंदन घिसते ना वो खल कहते, कोई बात नहीं, समझ लो जो अपने अपने भाषा में। देखते शक्ति में से व्यक्ति नाम बाहर आती है, यानी प्रकट होती है। शक्ति पड़ी थी उसमें से वो व्यक्त हुआ, तो वह सामान्य ऊपर विशेष 64 पोरी प्रकट हो गई। पूरा रुपया 16 आना हो गई, यानी 100% हो गई, इतना कहना है। वैसे भगवान सामान्य रूप से अनंत ज्ञान, अनंत आनंद आदि अनंत गुण का धाम आत्मा है। अनंत गुण का धाम सामान्य है, उस पर एकाग्र होने से। अब ये लीनी पीपर जुदी है, घिसने वाला जुदा है, पत्थर जुदा है, वो सब एक दृष्टांत एक देश होता है। यहाँ तो आत्मा को कोई घिसने वाला नहीं है, आत्मा स्वयं ही अपने में ही एकाग्र, उसको स्वयं ही निर्णय करना है, स्वयं ही उसकी श्रद्धा ज्ञान करना है, और अपने में एकाग्र होगा तो ये स्वयं से ही सब कुछ होने वाला है। तो कहते सामान्य है, उस पर एकाग्र होने से सर्व विकास हो गया, यानी इतनी स्वाधीनता है इसमें, जितने अनंत गुण है उन सबकी पर्याय का विकास हो गया। जैसे सम्यक होते सभी गुणों में अंशिक वो सम्यक का अंश चालू हो जाता है, ऐसे यहाँ परिपूर्णता सभी गुणों में आ जाती है। ऐसा नैरोबी में कहीं मिले ऐसा नहीं है, हा हा, यहाँ तो पैसे दे उसे भी धर्म नहीं होता, ऐसा कहा। नैरोबी में दिगंबर मंदिर हुआ, पिछले 2000 में मंदिर नहीं बना था, 2000 वर्ष में उसका ज्येष्ठ सुधी 11 को मुहूर्त हुआ है, 15 लाख का मंदिर करने वाले हैं। यहाँ के मुमुक्षु वहाँ रहते हैं, वास्तु में लाखों रुपए दे तो भी उसमें राग मंद हो तो पुण्य है, धर्म नहीं। खर्च कौन करे? जड़ को आत्मा खर्च कर सके? प्रभु यह कठिन बात है भाई, जड़ तो आत्मा से पर है, पर को आत्मा खर्च कर सके या दे सके यह आत्मा में है नहीं। आत्मा 5-25 लाख का दान दे उसमें राग मंद हो तो पुण्य होता है, धर्म नहीं। उससे जन्म मरण का अंत नहीं आता, हा हा, वह तो जन्म मरण का अंत तो महासामान्य भगवान अंदर जो चैतन्य ध्रुव आनंद कंद प्रभु है उसके आश्रय से होता है। अनंत 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 गुण की संख्या का पार नहीं, ऐसा अनंत अनंत संख्या से गुण का धाम आत्मा सामान्य है। इस सामान्य पर दृष्टि करके, ये लाइट बंद कर देना, सामान्य में एकाग्र होकर है अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर, अनादि अनंत ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर। बापू यह तो अध्यात्म की बात है, यह कोई कथा नहीं, वार्ता नहीं है, यह तो भगवान की, त्रिलोकनाथ की वाणी है। भगवान परमात्मा विराजते हैं, वहां कुंदकुंदाचार्य गए थे, सिमंदर भगवान तब भी थे और अभी भी वे विराजमान है। महाविदेह में परमात्मा विराजते हैं, सिमंदर भगवान, केवली परमात्मा, दिव्य ध्वनि, इच्छा बिना ओम ध्वनि निकलती है। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर अरिहंत पद में प्रभु है, उनके पास कुंदकुंदाचार गए थे, 2000 वर्ष पहले वहां से आकर यह शास्त्र बनाया। भगवान ऐसा कहते हैं, हाँ, जिनेश्वर देव ऐसा कहते हैं कि तेरा जो अनादि सामान्य ज्ञान है, सामान्य यानी एक रूप ध्रुव ज्ञान, सामान्य आनंद, सामान्य शांति, सामान्य सामान्य अर्थात ध्रुव यानी अनंत गुण रूप, वो सामान्य है। सामान्य में सभी गुण को ले लेना और विशेष में पर्याय को लेंगे। स्वच्छता सामान्य, ईश्वरता सामान्य, ऐसी अनंत शक्तियों का उसका सामान्य रूप है। और एक आत्मा सामान्य कहने से वो तो उसमें ज्ञान सामान्य, सारे अनंत गुणों का सामान्य रूप से उसमें आ गया। उसके भेद नहीं, गुणों के भी भेद पर लक्ष्य जाए तो उसको सामान्य में नहीं गिनेंगे, वो विशेष हो जाएगा। अनादि ज्ञान सामान्य रूप, यह कोई नया नहीं है, ऐसा कहते हैं। अनादि ज्ञान सामान्य रूप, उसी तरह अनादि अनंत आनंद सामान्य रूप, वैसे अनादि शांति सामान्य रूप, त्रिकाल शांति, अंदर ऐसा अनंत स्वभाव पड़ा है। वो सामर्थ्य तो अनंत है ही है, वो गुण भी अनंत है। कठिन पड़ता है आदमी को, क्योंकि कभी ऐसे सुना नहीं ना। ऐसे स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर, महाविकास, पहले क्षोभशम ज्ञान में तो अल्प विकास था, यानी अभी भी विकास हमारी है, पर्याय है, सामान्य का विशेष है, वो अल्प ज्ञान है। और वहां महाविकास हुआ है ना, केवल ज्ञान की बात है, यानी अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की बात हो रही वहां। तो क्षोभशम ज्ञान में तो अल्प विकास था, क्षायिक ज्ञान में तो महाविकास है। उमाबेन, क्षायिक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक तो को क्षायिक ज्ञान नहीं कहते, केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान। अभी हमारा आपका ज्ञान कैसा है? क्षयोपशम ज्ञान है, और वहां ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय हो गया, तो क्षय की अपेक्षा नाम पड़ा है क्षायिक ज्ञान। यानी कर्म के क्षय ने उत्पन्न नहीं किया है तो जीव का अपना स्वयं का परिणाम है, स्वयं से उत्पन्न हो रहा है। सामने कर्मों की अवस्था देखकर उसके तरफ से नाम दिया गया, उसको कहेंगे क्षायिक ज्ञान। तो क्षायिक ज्ञान में तो महाविकास है, एक समय में तीन काल तीन लोग जाने, ऐसा सामान्य स्वभाव पर महाविकास हो गया, यानी जितनी सामर्थ्य है वो पर्याय में प्रकट हुई। सामान्य ऊपर लक्ष्य और ध्यान करने से पर्याय में विकास हो गया, यही मार्ग है। सम्यक दर्शन के लिए भी यही है, सामान्य ऊपर लक्ष्य और ध्यान करने से ही पर्याय में अल्प विकास, कौन सा आत्मानुभव रूप सम्यक ज्ञान रूप होगा, फिर वो जब तक स्थिरता बढ़ते बढ़ते बढ़ते, चारित्र में वृद्धि होते, वितरागता बढ़ते बढ़ते पूर्ण वितराग होगा, फिर सर्वज्ञ हो जाएगा। यह पंक्ति बहुत ऊंची है, अनादि ज्ञान सामान्य, ऐसे अनादि आनंद सामान्य, ऐसे अनादि शांति शांति अकषाय सामान्य स्वभाव, वैसे अनादि जिन स्वभाव सामान्य, अनादि ईश्वर स्वभाव सामान्य, ऐसे ऐसे अनंत सामान्य गुण है। वो सामान्य विशेष गुण उसके बात नहीं, गुण को ही सामान्य कहा। उसमें यहाँ एक ज्ञान सामान्य प्रधान रूप से लिया है। आप कहेंगे ज्ञान तो विशेष गुण और यहाँ सामान्य कह रहे हैं, उसकी बात नहीं है। ज्ञान के पर्याय है वो ज्ञान विशेष हुआ, और ज्ञान गुण है वो ज्ञान सामान्य हुआ, इसकी बात है। भगवान कहते हैं वह ये वाणी है, संतो अड़तिया होकर, बीच आड़ है कि आढ़ है, आड़तिया, हाँ डब्बे वाला डब, संतो आड़तिया होकर वितराग का माल जगत को देते हैं। भगवान का माल ऐसा है, आहा हा, अरे सुनने में ना आए वह विचार में कब ले, और कब ज्ञान ध्रुव ऊपर दृष्टि करे, ध्रुव स्वरूप पर दृष्टि करे। ध्रुव अर्थात महासामान्य, और यह विकास यानी पर्याय होती है वह उत्पाद व्यय रूप पर्याय, विकास कहो विशेष कहो उसको, पर्याय कहो एक ही बात है, वो उत्पाद व्यय रूप होती है। केवल ज्ञान की पर्याय भी उत्पाद व्यय रूप है, हर समय उत्पाद नेक्स्ट समय में उसका वे नई उत्पाद, फिर उसका वे नई और केवल ज्ञान का उत्पाद। तो कहते उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, उसमें उत्पाद है वह पर्याय है, ध्रुव है वह सामान्य गुण है, यानी गुण सामान्य, सो सामान्य ने वो वाला सामान्य, अनादि सामान्य जिसको कहा। यह सामान्य जो त्रिकाली द्रव्य है वह अनंत गुण का पिंड द्रव्य सामान्य है, उस पर महाविकास से व्याप्त होकर अर्थात केवल ज्ञान महासामान्य ऊपर व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से अर्थात अपने से रहता है। ये पर्याय अपने से हो गए है ना, कर्म का आवरण गया इसलिए हुआ है ऐसा नहीं है, आई ना बात, कर्म अविक्षय हो गया इसलिए ज्ञान हुआ है केवल ज्ञान, ऐसा नहीं है। भगवान परमात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ वह स्वतः ही रहने से अर्थात वह अपने से रहता है, स्वयं उत्पन्न होने से एक बात और स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। उस समय की अपनी पर्याय की उत्पाद दशा के कारण से स्वयं केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, कोई कर्म का अभाव हो तो उत्पन्न होता है अथवा पूर्व की पर्याय से उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। देखो हमने वो निमित्त उपादान अभी पढ़ा था, तारा बेन उमा बेन आप तो थी, तो उसमें हमने पहले चार कारण बताए थे, एक तो निमित्त कारण वो तो परद्रव्य है, फिर उपादान कारण में तीन बताए थे याद है, पहले में पहले त्रिकाली उपादान और दूसरा है वो क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान में भी दो भेद, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप कारण और तत्समय की योग्यता रूप कारण, तो ये दोनों ही क्षणिक उपादान एक ही समय में उपलब्ध है। अनंतर पूर्व पर्याय तो पूर्व समय में थी पर उसका व्यय इस समय में है, समझ में आती है इन बात, तो कहते हैं कि पूर्व की पर्याय से उत्पन्न होता है ऐसा भी नहीं है, कर्म का अभाव ने निमित्त है उससे भी नहीं है, त्रिकाली तो सामान्य तो था ही था परंतु अभी तक क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, तो कहते उसका नियामक कारण कौन है तो क्षणवर्ती पर्याय, परंतु उसमें भी पूर्व की पर्याय से भी नहीं उत्पन्न हुआ है। पूर्व की पर्याय में मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा भी नहीं, हुआ था ना मोक्ष मार्ग है इसलिए मोक्ष हुआ ऐसा भी नहीं है, वो है पूर्व पर्याय उसका व्यय होकर हुआ उससे नहीं हुआ। महासामान्य ऊपर महाविकास होकर स्वयं और स्वतः होता है स्वयं और स्वतः दो शब्द है ना, स्वतः ही रहने से स्वतः ने अपने से ही हो गया, वो अपने से रहने से स्वयं उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान अपने में सामान्य ऊपर एकाग्र होकर स्वयं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो पर्याय जो है सामान्य होकर उत्पन्न हो गया और वो स्वयं केवल ज्ञान रूप से उत्पन्न हो गया, ये कह रहे हैं। चार घाती कर्म क्षय हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, वह भी निमित्त की अपेक्षा से कहने में आता है, देखो कहना बात अलग है और रियलिटी वास्तव बात अलग है, वास्तव में तो वह स्वयं उत्पन्न होता है, हमें तो अभी ये पता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं से उत्पन्न होती है, किसी परद्रव्य के कारण निमित्त के कारण होती नहीं, कथन में आएगा कि ये इसने ऐसा किया, जीव ने कर्म को क्षय किया उसका और कर्म का क्षय हुआ इसलिए जीव को केवल ज्ञान हुआ, ये कथन पद्धति है, वो निमित्त से कथनी होती है, परंतु कार्य तो प्रत्येक द्रव्य के अपने उपादान से अपनी पर्याय उत्पन्न होती है। कर्म निमित्त नहीं परंतु कर्म का भी अभाव रूप निमित्त है ही नहीं वो निमित्त है, उस समय क्षय नहीं हुआ है परंतु क्षय हो चुका है, अभी वो क्षय 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 चल रहा है तभी उसको क्षय ज्ञान ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि पहले समय में जो केवल ज्ञान हुआ उसी को क्षय कहा नेक्स्ट समय में उसको क्षय ऐसा नहीं है, क्षय कहेंगे उसको क्योंकि अभी उसका क्षय रूप से अभाव वहां विद्यमान है, ये उसका अभाव रूप निमित्त लेते हैं उसको। उस समय केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होने का जन्म क्षण, इसको जन्म क्षण कहते हैं, इसी में प्रवचन सार में आने वाली बात है, आएगी। और अभी हमारा जो विषय चल रहा है संडे को, तो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है ना, ये कितना बिल्कुल कर्म के षटकारक उसमें, जीव के षटकारक उसमें, अपने वो पर्याय के उसके अंदर होते। सामान्य जो है उस पर उत्कृष्ट एकाग्रता से स्वयं केवल ज्ञान स्वतः ही रहने से, स्वतः रहने से और स्वयं उत्पन्न होने से, उसको रहने में किसी का आश्रय नहीं और उत्पन्न होने में किसी का आश्रय नहीं, ऐसा कहाँ है। आपके जवाहरात में धंधे में इतने पैसे कमाए, लाखों कमाए, धूल कमाए, अरे प्रभु क्या करे। हाँ हाँ, अनंत काल से प्रभु तेरी चीज अंदर ध्रुव है, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान, ऐसा अनंत अनंत गुण संपन्न प्रभु है, उस पर तेरी दृष्टि नहीं, उसका स्वीकार नहीं। अब कितने बारंबार आचार्य ने तो कहा है, गुरुदेव ने कितने बार उसको, जिसको कहें घूट घूट कर जो गोलन कर करके वो घूटी पिलाई है, ये कितनी बात याद आती है। और किसी ने गाली दी हो तो कितने सालों तक वो अंदर चुपती रहती है, और ये भगवान 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 कहकर बुला रहे है, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है ना। तो कहते उसका स्वीकार नहीं, उसका सत्कार नहीं, उसका आदर नहीं, उसकी उपाधियता नहीं, और बाहर के पैसे, इज्जत, स्त्री पुत्र कुटुंब का आदर है। हम ही अपने से देते 24 घंटे में किसको कितना समय देते हैं, उसके हमको पता चलता है किसके लिए किसका आदर है और किसका नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान का आदर है, हा हा, शुभराग दयादान का आदर है, उसके आदर में तो आत्मा सामान्य है, वह हेय हो गया है, क्योंकि एक का आदर है तो वो दूसरे को हेय कर ही दिया है, आत्मा का लक्ष्य छोड़कर ही बहिर्लक्ष्य हो गया है, तो उसने आत्मा को हेय कर दिया, आत्मा का अनादर कर दिया, अभिनय कर दिया है ना। हमें तो ऐसा कहते आत्मा का खून कर दिया, तो आत्मघाती महापापी ऐसा कहते थे कैलाशचंद जी, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व तो नहीं माना, तेनी उन्हें आत्महत्या कर दी, आत्मघात कर दिया, ये कह रहे। राग का आदर किया तो त्रिकाली भगवान हेय हो गया, और त्रिकाली सामान्य को उपादेय करके ग्रहण करते, ग्रहण करना इन्हें जानना, त्रिकाली सामान्य को उपादेय करके ग्रहण करते हैं यानी जानते रहते हैं, तो राग हेय हो गया, नहीं तो राग हेय है आत्मा उपादेय से हमने रट लिया सात तत्वों की बात, ये रटने से नहीं होगा। तो उसका लक्ष्य करेंगे, उसमें लीन हो गए, ग्रहण करेंगे, जानते रहेंगे, तो राग हेय हो गया। हाँ हाँ, अलौकिक बात है भाई, सामान्य मनुष्य को तो सुनने मिले नहीं, संप्रदाय में तो यह बात ही नहीं है, हमें तो मालूम है ना, ये करो व्रत करो उपवास करो, और ये लोग कहते हैं भक्ति करो, कर्म धन की पूजा करो, सिद्ध चक्र की पूजा करो, अरे प्रभु। लेकिन सुन तो सही, सब बातें अलग बापू, क्या हो दूल्हे बिना की बारात जोड़ दी, क्या कहा, भीड़ को बारात कहेंगे क्या। आज सुबह सुबह बारात गई थी हमारे इधर से रोड, उसको बारात कहेंगे कोई मोमेंट ने, वो दलित दलित सुबह 6:45 5:30 पूरे पूरा ट्रैफिक बंद किया था, पूरा ये ब्रिज है ना जाने वाला आने वाला ट्रैफिक पूरा, इतने आदमी जा रहे थे। हाँ नहीं, हमारे यहाँ से 5:30-6 ही गए। हाँ आपके वहाँ आए होंगे, जैसे वो पूर आता है ना वैसा आदमियों का, तो उसको कोई कहेंगे क्या बारात है। तो केवल भीड़ को बारात नहीं कहते, वो दूल्हे के साथ वाली भीड़ है तो बारात कहेंगे, और वो तो मैयत के साथ होगी तो उसको क्या कहेंगे, जो कोई शव लेके जाते हैं उसको बारात थोड़ी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मैयत कहेंगे ना। हाँ जनाजा, वो तो हिंदी शब्द मोहम्मेडन में कहते उसको मयत कहते ना, मयत जा रहा है, मयत है उसके साथ जा रहे थे, मय जा रहे ऐसे कहेंगे। देखो क्या कह रहे, यहाँ वही कह रहे, दूल्हे बिना की बारात जोड़ दी, उसे बारात नहीं बोलते, आदमियों का समूह कहते हैं, भीड़ कहेंगे उसको, बारात नहीं कहेंगे। भगवान जिसमें आए नहीं, तीन लोक का नाथ पूर्णानंद स्वरूप, सामान्य की दृष्टि नहीं हो, उसमें लीनता नहीं हो, तब तक एकड़ा विनाना मिंडा, बिना अंक के शून्य, नहीं समझे। एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं सुशीला बेन, हमको नहीं मालूम, आप बताओ। हाँ साथ साथ, हाँ हाँ। तो हमने नक्की किया अभी इकट्ठा करना है 1 करोड़ रुपया, तो चलो पहले जीरो जमाना है, इकट्ठा करना चालू कर दिया, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 7 जीरो आ गए, कितनी वैल्यू हो गई, जीरो। उसके पहले एक नहीं लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कितने भी जीरो आप ले, इसको कहते अंक बिना की बिंदी, एकड़ा बिना ना मिंडा। ऐसे ही जब तक सम्य दर्शन नहीं है, तो कितने भी उच्च प्रकार का शुभ भाव क्यों न हो, अभी वो मिथ्या दृष्टि है, तो उससे कोई धर्म नहीं है, कोई शर्म की शुरुआत भी नहीं हुई उससे। श्रोता कहते शून्य किए हो तो फिर उसमें से एक हो सकता है, गुरुदेव कहते शून्य से एक नहीं होता, क्योंकि जीरो लिखा है ना हमने, तो हमने जीरो का एक कर देंगे हम, क्योंकि सियाने हैं ना। और गुरुदेव क्या समझाते वो भी समझ लो, पूछने वाले कहते देखो हमने जीरो किया कि नहीं, उसको एक कर दो, एक हुआ कि नहीं जीरो में से, कहते शून्य से एक नहीं होता, एक अंक का शून्य भी अलग तरह का होता है, क्योंकि वो पहले ऊपर करके फिर उसको जोड़ते हैं। मान लेते एक के ऊपर जीरो लेना है तो इधर लिखेंगे, इसको हम नीचे नहीं करेंगे, इसका जीरो अलग होगा और फिर हम नीचे करेंगे उसको, ये कह रहे वो। देखो शून्य में से एक नहीं होता, एक अंक का शून्य भी अलग तरह का, एक अंक का भी वो जो उसका राउंड है ना शून्य जो है, हाँ, गोल करके फिर उसको नीचे लेते हैं। मात्र शून्य ऐसा होता है और एक अंक का शून्य दूसरी तरह का होता है। एक अंक में पहले शून्य होता है लेकिन वह अलग होता है। सब विचार आ गए हैं कि सामने वाले प्रश्न पूछने के पहले उनके उत्तर तैयार है। एक अंक के बाद शून्य होते हैं, अर्थात सम्य दर्शन हुआ बाद में अंतर स्थिरता हो तो वह चारित्र कहा जाता है। बाकी सम्य दर्शन बिना, ध्रुव चैतन्य के आनंद के आश्रय बिना जो कोई व्रत आदि क्रिया करे वह सब संसार में रखने की चीज है। उसके बिना है तो उसमें तो वो तो कर्ता पना बना ही है, क्योंकि अभी तो अकर्ता स्वभाव का अनुभव नहीं किया ना उसने, तो जो कोई व्रतादि करे उसका कर्तापना भी है उसमें, और मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ ऐसा उसमें अभिमान भी उसको है, इसलिए कहते वो सब शून्य है, संसार में रखने की चीज है। यहाँ तो अभी, वहां तो व्रत तप की बात बताई, अब यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान की बात हो रही, यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान दुख और संसार का कारण है, तो दूसरे का तो प्रश्न कहाँ है, शुभ भाव की बात तो बहुत दूर की, यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान जो परलक्षी ज्ञान है उसको भी संसार का कारण और दुख बताया है। कठिन पड़े लेकिन वस्तु तो भगवान का मार्ग तो यह है। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर देव हाजरा हजूर साक्षात विराजते हैं, वर्तमान में है, उनकी बात चल रही, ये यह वाणी है बापू, यह वाणी अभी कहीं नहीं है, ये सुनने को भी नहीं मिल रही है। तो हमारे भाग्य है कि वो 2000 वर्ष पहले कुनकुंदाचार्य ने वहां से आकर लिख के रखी है, अमृतचंद्राचार्य ने उसने माल निकाल निकाल कर बताया, और हमारे अहो भाग्य है कि हमें भी गुरुदेव जैसे निमित्त मिले। उन्होंने तो अपना कल्याण कर ही लिया, परंतु ये बात खोलकर इतनी आसान करके बताई, एक पंक्ति में तो सामान्य और विशेष दोनों आ गए। आहा हा, नहीं तो ये 2 लीटी में से इतना सब माल निकालना साधारण चीज नहीं है। वस्तु जो ध्रुव ज्ञायक प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था से भिन्न ऐसी त्रिकाली ध्रुव चीज को यहाँ सामान्य कहते हैं। जब सामान्य कहते हैं तो उसके भेद सब उसमें समा गए, मिट गए हैं। भेद दिखाई दे तो वो सामान्य नहीं कहेंगे। तो पर्याय को कहाँ रखना? पर्याय को देखना मत, है वहां रहने दो। आप उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं हो सकता। परंतु पर्याय को देखेंगे हम नहीं, उसकी नजर बंद कर दी हमने, पर्याय को देखने की दृष्टि बंद कर दी, अकेले सामान्य को देख रहे। जैसे हमारे पास सोने के बहुत सारे गहने हैं, तो वो बंगड़ी है, हार है, मीठी है, तो हमने वो पर्याय वाली दृष्टिकोण कर दी। कितना सोना है देखते हम, तो हम ऐसा नहीं गिनते कि मेरे पास चार बंगड़ी है, इतना है, कितना तोला सोना है, ऐसे हम गिनते। तो क्या किया? तो पहले बंगड़ी हार सबको मिटा दिया ना, तो क्या किया? लक्षण इसे गौण कर दिया। उसको गौण और मुख्य करने की कला हमारे ज्ञान में है। इस तरह से हमें यहाँ मुख्य किसको करना है? सामान्य को मुख्य करना है। भेद उसमें गौण करके हमने उसमें नहीं है कहा, सर्वथा नहीं है ऐसी बात नहीं, हुआ तो है ही नहीं, हमको दिखाई नहीं देंगे। देखो वस्तु जो ध्रुव ज्ञायक प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था से भिन्न, क्योंकि बिना अवस्था का द्रव्य नहीं होगा। परंतु अभी हम अवस्था हमने गौण कर दी, सब केवल सामान्य को देख रहे हैं। ऐसी त्रिकाली ध्रुव चीज को यहाँ सामान्य कहते हैं, और सामान्य ऊपर जो पर्याय होती है वह विशेष है। सामान्य ऊपर महाविकास से प्राप्त, महाविकास अर्थात जो शक्ति में था इसलिए यहाँ विकास हो गया। शक्ति में सर्वज्ञ पद है तो पर्याय में सर्वज्ञ पर्याय उत्पन्न हो गई। देखो हम अरिहंत सिद्धत को देखते हैं, नमस्कार करते हैं, तो कहते हैं उनके तो ये व्यक्त पर्याय सर्वज्ञ है, वीतरागी और सर्वज्ञ है, तो ये पर्याय है। तो पर्याय है तो हुई कहां से? हाँ बिल्कुल, द्रव्य में से, शक्ति में से हुआ। तो शक्ति में सर्वज्ञ पद था तो उत्पन्न हुआ। तो हमारे पास शक्ति है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। कितनी है? जितनी उनके पास है उतनी। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप ही है, और ये भगवान आत्मा ने मैं स्वयं की, हर एक की अपनी बात चल रही है यहाँ पर। कैसे बैठे प्रभु? उसमें एक सर्वज्ञ गुण है, आत्मा में ज्ञान गुण है, लेकिन वह सर्वज्ञ गुण है, दर्शन गुण है, वह सर्वदर्शी गुण है, आनंद है, वह पूर्ण आनंद है, क्योंकि जो शक्ति होती है, सामर्थ्य जो है, स्वभाव जो है, असीम होता है, परिपूर्ण तो है ही है, असीम, उसके कोई लिमिट नहीं, मर्यादा नहीं होती। वीर्य है, वह पूर्ण अनंत वीर का धाम है प्रभु। हाँ हाँ, ऐसे सामान्य ऊपर यानी सामान्य स्वभाव ऊपर, ऐसे अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव पर, सामान्य रूप स्वभाव पर, हाँ हाँ, महाविकास से व्याप्त होकर, महाविकास पर्याय में विकास यानी केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण विकास हो गया। जैसा शक्ति में सर्वज्ञ पद था ऐसी व्यक्त में प्रकट पर्याय विकास हो गई। स्वतः ही रहने से, और ये कोई दूसरा आया इसलिए हुआ ऐसी बात नहीं है, केवल ज्ञान अपनी स्वयं की योग्यता से उस समय उत्पन्न हुआ है। अपने से ही यह ज्ञान रहता है, किसी की मदद हो तो केवल ज्ञान रहता है ऐसा है नहीं, और स्वयं उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं रहता है, अपने से ही रहता है और स्वयं उत्पन्न होता है। सामान्य ऊपर स्वभाव का आश्रय करके एक समय में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। 64 पोरी तिखाश चरपराय को घूंटने से जैसे 64 पोरी पर्याय बाहर में आती है, ऐसे पूर्ण सर्वज्ञ पद अंदर है, उसका अंतर ध्यान करने से सामान्य ऊपर पर्याय में संपूर्ण विकास हुआ, उसका नाम केवल ज्ञान है और वह सुख का साधन है, यानी वही अनंत सुख भी है। यह केवल ज्ञान सुख का साधन है। देखो ये केवल ज्ञान एक समय में उत्पन्न भी हुआ, उत्पन्न होते होते सब पूरे विश्व को जान भी लिया उसने, जानते हुए ही परिणमन हो रहा है ना उसका से। वो तो आता है ना समय शब्द से, जानना और परिणमन ना। हाँ, नीचे के गुणस्थान में तो केवल ज्ञान है नहीं, तो अतीन्द्रिय सुख का साधन क्या? तो कहते हैं सामान्य स्वरूप जो भगवान आत्मा, उसको दृष्टि में लेकर, अभी नीचे के गुणस्थानों की बात करें, उसको दृष्टि में लेकर उसमें एकाग्रता होना, वह अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का और अतीन्द्रिय आनंद का साधन है। क्योंकि वहां अल्प ज्ञान यानी अल्प अतीन्द्रिय ज्ञान और अल्प सुख का प्रादुर्भाव ने प्रकट हुआ है, वही आगे परिपूर्ण केवल ज्ञान तक मार्ग, तो वही अंतर में एकाग्र होना है। दयादान व्रत भक्ति पूजा आदि सब राग है, वह साधन नहीं कठिन काम। क्योंकि हम साधना करते हैं साधना करते हैं ऐसे कहने वाले, ये तो शुभ भाव को ही साधन मानकर कर रहे हैं, उसका निषेध नहीं, शुभ राग मान्यता का निषेध। शुभ राग तो ज्ञानी के भी हो गए, परंतु तो ये मानता है कि ये करने से मुझे साधन हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उस मान्यता का यहाँ निषेध हो रहा है। आहा, अनादिकाल से वह दुखी है, उसे मालूम नहीं है कि आनंद मेरे में भरा है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन मृग को कस्तूरी की कीमत नहीं। शिकारी मारे तब कस्तूरी अलग हो जाती है, उसे शिकारी ले जाता है। इस प्रकार आत्मा में अंदर आनंद भरा है, जैसे नाभि में कस्तूरी है, वैसे अंतर में आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय शांति पड़ी है। वहां अंतर सामान्य ऊपर एकाग्रता होने से शक्ति में से व्यक्तता यानी व्यक्ति प्रकट होती है। पूर्ण व्यक्ति प्रकट हो वह केवल ज्ञान है। हाँ, वो तो मृग को मारकर तो शिकारी ले लेता है, तो यहाँ हमारे में से कोई आनंद और अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान लूट ले सकता है कि नहीं? वो तो कायम सेफ है। इच्छा में परिक्रमणा करता करता तत्सम इच्छा में दुक्कड़म, जीवी आवो ओरोविया तत्सम इच्छा में दुक्कड़म, थी गई सामायिक। तस्य उत्तरीकरणेन ठाणेनम मौनेनम जानेनम अप्पाणम ओसिरामी, आत्मा शु अने ओसिरामी शु। आहा हा, एक बाई नमोत्थुनम बोल रही थी उसे विशाश्री माली एक ज्ञाति के साथ विरोध था, उसमें ऐसा आता है दिवोतानम, उसका अर्थ किया दीवाटाने संग भी पीटिया अर्थ आता नहीं, दिवोतानम शरणम गई पैठा, नमोत्थुनम मा आता है ना, तो उसने क्या समझा है दीवाटाने संग भी पीटिया। लोगस्त सूत्र में आता है विहु रयमला, वो विहु या रयमला है, तो उसने क्या बोला विहार ओ मड़िया भाई, उसको ऐसा लगा कि अपनी तकरार लोगस में कहाँ से आ गई है, कुछ मालूम नहीं। लिमड़ी गांव की बाई थी, सेठ का आपासरा है ना और संघवी का आपासरा था, दोनों का विरोध था। ये तो बहुत साल पहले की बात है, अभी तो शब्दार्थ भी मालूम नहीं, भाव तो दूर रह गए बापू। अरे रे, यहाँ तो परमात्मा कहते हैं इंद्रिय के ज्ञान को छोड़। और क्या है वो अपभ्रंश होते होते क्या बोल रहे पता नहीं चलता है। ये इसमें भी आता है ना अपने वो उदक चंदन तन, क्या कहते दूसरी लाइन क्या है याद नहीं? हाँ, धवल मंगल फिर से धवल मंगल आगे क्या धवल मंगल गान के ज्ञान ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान नहीं है गान है, गान हम गाते हैं ना, गान रवा यानी आवाज, आवाज है वो आवाज उन सब नहीं 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 अपने में जो सब, और लोगों को लगता रहे वो गलत लिखा है गान, ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान और ज्ञान ऐसा पढ़ते है, पढ़े लिखे भी रवा के यानी आवाज, उनसे वो मंदिर भर गया है रवा ने आवाज। धवल मंगल गान, मंगल गानों से वो आवाज से गूंज गए हैं, वहां ज्ञान नहीं है, गान है। पता नहीं ना क्या बोल रहे हैं, गान वो अशुद्ध होगा, ज्ञान कर लिया उसको। आप कहते ये कह रहे थे ना, गान है मगर ज्ञान होना चाहिए। तो आपने बराबर बोला, अपन ज्ञान कहने वाले मैंने सुने हैं। हाँ, अरे वो अपने यहाँ पंडित को बुलाया था ना, किसने, वो हमारे जाऊ भाई गए थे, तो पंडित बोल रहा था ज्ञान रवान को ले। मैंने क्या बोल रहे हो आप, पंडित है ने वो जो कुछ पुजारी बुलाया था, अपना मोक्ष वाला नहीं था। हाँ, तीर्थंकर की धुनी अंगर अंगर अचे चुनी चेचुनी चेचना है ना, ऐसा कुटना वो रचे चुनी है। गणधर ने सुनी, देखो नेसना है ने वस्त्र पहनना, उसको नेसना कहते। गणधर ने सुनी अंगर अंगर अचे चुन ऐसा अंगर चेचुनी यानी अंगर को चेचुनी ऐसे बोलने वाले हमने सुने हैं, आपने नहीं सुने, गांव में चलता है ऐसा। अरे ऐसे कहीं पर कहां पर भी जोड़ देते हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, प्रभु पतित पावन मैं यानी कहां तोड़ना कहां जोड़ना पता नहीं है ना, तो ऐसा चलता रहता है। हाँ, अर्थ मालूम नहीं।
अरे जो रोज पूजन करते उनको ही मालूम
है। वही उन्हीं को नहीं मालूम, जो नहीं करते उनके अच्छा है ना। बोलते ही नहीं हूँ, अशुद्ध बोलने का सवाल नहीं है। देखो देखो आगे चलते,
चलो चलो आगे।
हाँ, यहाँ तो परमात्मा कहते हैं इंद्रिय के ज्ञान को छोड़, उसको है ये बताए ना, छोड़े ने क्या कर, अति इंद्रिय ज्ञान प्रकट कर। हाँ, और अति इंद्रिय ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अंदर पड़ा है, पड़ा है ना, वो हजरा हजूर है, विद्यमान है, उसका आश्रय ले, उसका ध्यान कर, तो तेरी पर्याय में संपूर्ण विकास हो जाएगा। खाली अधूरी की बात नहीं, एकदम संपूर्ण की बात नहीं, केवल ज्ञान हो जाएगा। वह प्रकट होने के बाद है वैसा ही रहेगा और स्वतः उत्पन्न हुआ है, ये स्वतः ही रहेगा, रहेगा यानी हर पर्याय में केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान करता चलेगा। ये कितनी पंक्ति में कितना भरा है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है, पहला शब्द आया ना, क्योंकि उसको सुख कहा ना, और सुख का लक्षण अनाकुल है। अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से यानी अपने से ही रहने से, पर्याय से रहने से, ऐसा कहते हैं, और स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए आत्माधीन है। इंद्रिय ज्ञान आत्माधीन है, आत्माधीन क्यों है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान आत्माधीन है ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए उन्होंने, वो स्वयं ही रहती है, स्वयं ही उत्पन्न होती है, आत्मा के अधीन होकर ही अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। हा, समझ में आया, पहला बोल हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है, क्यों, उसके उत्तर में यह बताया, 5 पॉइंट्स बताएंगे ना, अनाकुल क्यों है उसके। और आत्माधीन होने से आकुलता नहीं होती, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान और अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप पर्याय में अनाकुल होने से दुख नहीं होता, आत्माधीन होने से आकुलता नहीं होती है। केवल ज्ञान एक समय में पूर्ण उत्पन्न होता है, उसमें आकुलता नहीं है। अब दूसरा बोल, समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से समंत है। समंत यानी प्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, समस्त अशेष द्वार खुले हुए हैं, समस्त आत्म प्रदेशों में, आत्मा में असंख्य प्रदेश है, जैसे सोने की सांकड़ी में हजार कड़ी होती है, हजार कड़ी होती ना चेन, उसमें कड़ी है, ऐसे भगवान में असंख्य प्रदेश है, भिन्न भिन्न प्रदेश 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 ऐसे असंख्य प्रदेश है, चैतन्य घन असंख्य प्रदेश में है, क्योंकि समस्त अशेष द्वार खुले हुए हैं, असंख्य प्रदेश के सभी द्वार खुल गए हैं, है? आत्म प्रदेशों में परम समक्ष, समक्ष यानी प्रत्यक्ष, हम हैं ना, हमारे समक्ष है, हमारे सामने, हमारे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के लिए समक्ष शब्द आया, ज्ञानोपयोग रूप होकर असंख्य प्रदेशों में परम समक्ष प्रत्यक्ष, परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर, ज्ञानोपयोग रूप होकर अर्थात जो शक्तियां थी वह नहीं लेकिन उपयोग रूप होकर, देखो जानने का कार्य है वो उपयोग में हो रहा है, शक्ति तो थी जानने की, ये उपयोग रूप होकर की बात है, और प्रत्यक्ष उपयोग रूप ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से, व्याप्त होना है ना वो तो पर्याय में प्रकट होना, अर्थात प्रसरने से समंत है, प्रत्यक्ष है, इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं। इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती। शोभशम में क्या था, विशिष्ट आत्म प्रदेशों से वो उपयोग रूप ग्रहण, उपयोग रूप की बात है, और यहाँ समस्त आत्म प्रदेशों में उपयोग रूप जानना हो रहा है, यानी कोई भी अन्य बंद द्वार है कहीं से नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं, सभी से सब कुछ जान रहे। अज्ञानी जीव नमो अरियंतानम, नमो अरियंतानम किया करे, परंतु अरियंत का केवल ज्ञान कैसा है इसकी खबर नहीं, केवल ज्ञान का निर्णय करे जाओ तो अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय हो जाता है और आत्मा का अनुभव होता है। देखिए अज्ञानी तो नाम ले रहा है, जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, माला गिन रहा है, पन कहते कि उसको पता नहीं कि उसका केवल ज्ञान कैसा है। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम पहाड़ा बोल ले, आहा हा, वो कल रविवार को आया था ना हमारे यहाँ, एक आए थे बुजुर्ग सोलापुर से, किसी ने उनको बताया हमने कितने मुनियों को समय दर्शन दिया, आपको भी दे देंगे, हाँ तो चलो अच्छा है, हाँ अभी नहीं, अभी उसको आए हुए भी 10 साल हुए होंगे, 10 नहीं ज्यादा, वो लिखा है 2001 में कारण कार्य रहस्य, उसके पहले आए थे, हाँ क्या, नहीं 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 वो आदमी एक आए थे उनको किसी ने बोला, 87 साल के थे, और कहते मैं 4 साल से उनके कहे अनुसार मैं चल रहा हूँ। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, बिल्कुल पद्मासन लगा के बैठता हूँ 15 घंटा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त करना है ना 48 मिनट, तो नमो सिद्धानम का मैं जाप करता। मैंने ऐसे पूछ लिया तो सिद्धों का स्वरूप तो जानते होंगे, तो उसकी क्या आवश्यकता है, भोले थे और सरल थे, यानी जो है वो सब बताते थे, उनका तो ऐसा भी कहना, तो हम जैनी है और हमने तो इतना दान वगैरह किया है, मैं इतना पुण्य किया है, हमें तो अनंतानंदी है ही नहीं है, बस मिथ्यात्व का नाश करना है, यानी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं है, और ऐसे समाज में भोले लोग भी बहुत हैं और उनको उल्टा गाइडेंस देने वाले भी बहुत हैं। ये कहते ना पहाड़ा बोल ले, ऐसे बोल जाते थे, और उन्हें ऐसा लगा कि नाम लेने, अन्य मति में भी है ना वो नाम के महात्मा है, बस नाम ले लो, नाम स्मरण, ऊपर नाम के पीछे भाव उनका कुछ पता नहीं आता नहीं, बस नाम लेना बस।
आप उनको भोला कहते हैं वो करुणा से कहते हैं या उसकी असलियत बताते हैं?
दोनों ही, क्योंकि ऐसा लगता है ना विचारों के कैसे है, एक तो स्वयं की मूर्खता है कि ऐसे के चपट में आता है, उनकी ऐसी योग्यता हम कहेंगे, पर इतना है कि उनको सत्य जानने के कहीं क्यूरियोसिटी के नहीं हो रहा है कि कहीं मैं चूक रहा हूँ, कहीं तो कुछ रह गया है, और उनके देखो अपनी योग्यता नहीं होती तो बताने वाला भी नहीं मिलता। ऐसा लगता विचारों को बताने वाला नहीं, तो जिनको बताने वाला मिला है उन्होंने कितना कार्य कर दिया।
मालूम नहीं है,
अरे मालूम नहीं, और वो हमारे यहाँ बच्चे आते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि ये छोटे छोटे घरों में तो केरोसिन के बाटली पहले तो बहुत था ना, वो तो बच्चों को मालूम नहीं, केरोसिन पी लिया एडमिट हो गए, किसी ने जानबूझकर पिया और किसी ने मालूम नहीं इसलिए पिया, क्या होगा असर तो वही होने वाला है। यानी स्वाध्याय वाली, हाँ सर, क्यों नहीं, देखो देखो संलेखना वाला शुभ भाव है, उसको हम समाधि मरण नाम नहीं देंगे, परंतु उसके भाव क्या है कि बाकी सब त्याग करके मैं संलेखना लूं। जैसे हम भक्ति करते हैं, यात्रा करते हैं, तो समय दर्शन के बिना ये शुभ भाव हो रहे कि नहीं हो रहे, तो शुभ भाव का निषेध नहीं है। उस मान्यता कौन सी कि ये करने से मुझे यानी मुझे अच्छी गति मिले इसलिए करे, या इस मान्यता से हो रहा है, तो वो गलत है। यानी वो मैं कार्य करूं, यानी ये जो शुभ भाव रूप जो संलेखना मैंने ली है उससे मैं कुछ धर्म कर रहा हूं, ये मान्यता होगी तो गलत है। संलेखना लेने में कोई, वो स्वयं अपनी मर्जी से ले रहे, अपने स्वयं अपनी बुद्धि से ले रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई उसके ऊपर थाप रहा है, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, उसने अपने मर्जी से कुछ बातें छोड़ दी, मुझे अभी इसका त्याग कहेंगे, क्योंकि पद्धति तो ऐसी है ना, तो बाहर में क्या वो तो बोल के करेगा और क्या है, पर मन में उसके मान्यता कैसे है उसका उसका फल मिलेगा, वो शुभ राग है, बस उसके लिए शुभ राग है। और ऐसे शुभ राग आते हैं, क्यों किसको कौन से शुभ राग आने चाहिए ऐसा कोई नियम तो है नहीं, ख्याल में ना। तो उसको तो पता ही है ना, ये तो वो तो अगर स्वाध्याय है और सच्चा उसका स्वाध्याय मालूम है उसको, तो उसको भी पता है ये शुभ राग है, ये तो कुछ धर्म नहीं है, और करने का तो निषेध है ही नहीं है। टोडर मजी साहब ने भी कहा ना, शुभ प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, पर श्रद्धा में तो ऐसा रखो। अभी इतना ही क्या, वो मुनि दीक्षा लेने वाले भी होते हैं, उनको पता है कि अभी ये सच्ची मुनि दीक्षा, पर दीक्षा भी ले लेते हैं अंत में, मालूम है अभी समय दर्शन नहीं हुआ है, परंतु लेने के भाव हो तो उसका निषेध नहीं है, परंतु वो सच्चा मुनिपना नहीं है ये बात समझते हैं और लेते हैं, क्योंकि इसका निषेध तो किसी का नहीं होगा। कल में आती हूँ, अच्छा अच्छा हाँ हाँ उन्होंने ली थी, अच्छा प्रश्न पूछा था, ये लेने में कोई अर्चा नहीं, लेते भी है। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नम सदा देत हो। वीरेश भाई,
नमो